मेरे अजीज़ दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 21 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं क्वाड के बारे में कुछ बातें करूंगा और इसके माध्यम से हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी पर भी हो सकता है कि बातें करें, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और इनफैक्ट दूसरी घटनाओं में आज कुछ विशेष है नहीं, लेकिन एक घटना की चर्चा मैं आप सबसे करना चाहूंगा। आप सबने न्यूज में सुना होगा कि अभी जो हमारे लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं इनमें जो खर्च की सीमा है और जो दूसरे चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं आप कह लीजिए चुनाव के लिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उनके खर्च की सीमा बकायदे निर्धारित कर दी गई है कि आप इस चुनाव में इससे अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए बकायदे चुनाव आयोग का अपना एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि इन इन खर्चों का पूरा हिसाब देंगे, और यदि चुनाव हो जाने के कुछ पर्टिकुलर डेज के बाद जो प्रत्याशी है वो अपना हिसाब नहीं देता है तो यहां तक कि उसके चुनाव को अवैध घोषित किया जा सकता है। ये जो खर्च की सीमा निर्धारित की गई थी इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, और कुल मिलाकर कारण यह था कि लगातार इस बात की खूब चर्चा होती थी, इस पर बहस भी होती थी कि भारत में चुनाव में सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि चुनाव में अनाप शनाप लोग पैसा खर्च करते हैं, वो बकायदे लोगों को खरीद लेते हैं, मतदाताओं को लालच देते हैं, उनको और दूसरी चीजें बांटते हैं। तो इससे जो एक लोकतांत्रिक चुनाव की जो स्पष्टता होनी चाहिए, जो पवित्रता होनी चाहिए, वो भंग होती है। और स्वाभाविक बात है कि अगर प्रत्याशी चुनाव में अफराद पैसा खर्च कर रहा है और वो जीत जाता है तो एक प्रकार से अब वो कोशिश करेगा कि जो उसका खर्च किया हुआ धन है वो वापस आए, तो इससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। तो सच पूछे तो वैसे भी भारत में जो भ्रष्टाचार की जब बात की जाती है तो उसके केंद्र में बीज तत्व के रूप में कहीं ना कहीं इस चुनावी धन को माना ही जाता है। खैर, तो चुनावी खर्च की सीमा तय हो गई, अभी उसकी सीमा 10% बढ़ा दी गई है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यह केवल अभी के चुनाव के लिए है। अभी जो चुनाव आयोग ने रिकमेंड किया था या जो मांग की थी इस बात को लेकर के कि चूंकि कोविड के कारण थोड़ी सी अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं, आप बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर सकते, अब हो रही हैं या नहीं हो रही हो बात अलग है, आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, फिर आपको बकायदे डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, मास्क का उपयोग, तो इन सबको देखते हुए और बहुत ही व्यावहारिक बात भी थी कि जो खर्च की सीमा है वो 10% बढ़ा दी जाए, तो अभी 10% बढ़ा दी गई है। लोकसभा के संदर्भ में 70 लाख रुपए पहले खर्च किए जा सकते थे, 10% आप बढ़ा दीजिए तो वो 77 लाख रुपए अब खर्च किए जा सकते हैं। तो एक थोड़ी सी जानकारी आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, अभी आपको ये अंडरलाइन करना है अपने दिमाग में कि यह परमानेंट नहीं है। न्यूज के हिसाब से चूंकि इसका कारण कोविड को बताया गया है इसलिए फिलहाल ये अस्थाई है, हो सकता है कि आगे चल करके फिर इसे स्थाई भी कर दिया जाए, क्योंकि महंगाई महंगाई तो बढ़ती ही रहती है, उस समय फिर हम अलग से बात करेंगे अगर कोई ऐसी घटना हुई तो। फ्रेंड्स, आज मैं अब सीधे मुख्य विषय पर आता हूं और वह है क्वाड। मुझे याद है कि क्वाड के बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ी सी बातें की थी, लेकिन आज क्वाड के जरिए मैं कुछ और बातें भी शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोगों के पास अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक वक्त है। पहले हम देखें कि क्वाड को हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बकायदे एक सिलेबस दिया हुआ है और आपको चाहिए, और बिल्कुल चाहिए ही, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये अनिवार्यता है। आपको चाहिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाए। देखिए, जब मैं रच बस जाए की बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है कि आप तो एक बार पढ़ेंगे तो उससे नहीं रचे बसेगा, आप उसे रट भी लेंगे तो उससे नहीं रचे बसेगा। सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए, और जब भी आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो या किसी टॉपिक पर पढ़ ही रहे हो तो आपको चाहिए कि आप बकायदे फिर से सिलेबस को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं इसका सिलेबस में किस तरीके से उल्लेख किया गया है। ये उसका एक पक्ष है। इसके बाद उसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि आपके टेबल पर ही बकायदे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, बकायदे प्री एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर होने चाहिए और मेंस के भी क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। और आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है, या यूं कह लीजिए कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में प्री एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल रिलेशंस से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ताकि आपको यह पता लग सके कि प्री एग्जामिनेशन में इस सेगमेंट की तैयारी में आपको कितना वेटेज देना है, कितना जोर लगाना है, और फिर किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसकी जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि तभी आप ये तय कर सकेंगे कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। जैसे अगर आप इस बार प्री एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंटरनेशनल रिलेशन पर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक के तहत पूछा गया है कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, फिर ग्रुप दे दिए गए हैं, उसमें से एक ग्रुप को आपको छांटना है, वो एक अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। और एक जो दूसरा प्रश्न पूछा गया वो संधियों को लेकर के है, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हुई थी सुमेलित करना है, एक तरफ इंटरनेशनल ट्रीटीज के नाम है और उसके आगे उस ट्रीटी से संबंधित जो विषय रहे हैं उनके नाम है, ये भी अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन मैं प्रश्न कहूंगा। बस ये है, इसका मतलब यह हुआ कि जो हम क्वाड पर बात कर रहे हैं, देखिए आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि जो हम क्वाड पर बात कर रहे हैं, चूंकि G20 पर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वाड पर भी पूछा जा सकता है, पूछा ही जाएगा, नहीं पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? फिर जब आप सिलेबस में ढूंढने की कोशिश करेंगे पूरे सिलेबस में, तब आपको कुछ चीजें पता लगेंगी कि उसी सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है कि आपको इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है जिसका संबंध भारत से है, भारत के पड़ोसी देश उसमें मेंशन किया हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है वो मेंशन किया हुआ है, और ऐसी घटनाओं को आपको विशेष ध्यान देकर पढ़ना है जिनका संबंध भारत से है या जिनका प्रभाव भारत पर पड़ता है। आप सिलेबस उठा करके देखेगा तो आपको इस तरह की अनुभूति होगी। अगर आप इन सभी पैरामीटर्स पर क्वाड को कसकर देखेंगे, इस कसौटी पर, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं, जो क्वाड है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि नहीं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्वाभाविक तौर पर उस टॉपिक को पढ़ने का आपका तरीका बदल जाएगा, नोट्स बनाने का आपका तरीका बदल जाएगा, और सीधी सी बात है उसके प्रति आपकी निष्ठा भी बदल जाएगी, और ये आपको करना चाहिए, राइट? अभी मैं पूरे आपके इस पेपर के बारे में या कह लीजिए सेगमेंट के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्वाड को आधार बना करके मुझे तैयारी के बारे में कुछ यहां बातें बता देनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम क्वाड पर आते हैं कि बेसिकली ये क्वाड क्या है। अब आप देखिए कि इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, परिचय के बिना आप क्या करेंगे। तो फाउंडेशन है तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में जाइए, इंग्लिश में जब आप जाते हैं तो आपको शब्द मिलता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया चतुष्कोणीय, चार कोण, चतुर्भुज आप कह लीजिए, तो चतुर्भुज का कुछ सिंबल होगा, कुछ प्रतीक होगा। यहां प्रतीक यह है कि इसमें 4 देश हैं। सिक्योरिटी, याद रखिए यह सुरक्षा संबंधी डायलॉग है, बातचीत है। देखिए जब हम बातचीत कहते हैं तो इसका अर्थ आप ये मत लगाइएगा कि केवल बातचीत करते का है, तो बातचीत करने के लिए आप एक संगठन सा भी बनाएंगे। तो जो ये एक जो चतुष्कोणीय आप कह लीजिए जो सुरक्षा संगठन है, संवाद है, ये बेसिकली एक इनफॉर्मल सामरिक संवाद है आप कह लीजिए, इनफॉर्मल तौर पर, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही फॉर्मल तरीके से चीजें होती हैं, ये आपस में बातचीत करते हैं। और किस चीज के बारे में बातचीत करते हैं? देखिए इंग्लिश में वो सिक्योरिटी दिया हुआ है, आप सुरक्षा भी कह सकते हैं, आप सामरिक भी कह सकते हैं, युद्ध संबंधी, क्योंकि सुरक्षा का संबंध कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक या युद्धात्मक रणनीति से होता है, ये आपको पता लग गया। फिर आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाना चाहिए कि ये 4 देश कौन से हैं। भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। तो सीधी सी बात है कि जब आप ये जान लेते हैं कि ये 4 देश हैं और शब्द आपने पढ़ा है चतुष्कोणीय, तो अब आप इसको कैसे समझेंगे कि भैया इसको चतुष्कोण क्यों नाम रखा? फिर आपको एटलस उठाना चाहिए और एटलस में जाकर के इन चारों देशों की लोकेशन ढूंढनी चाहिए कि ये चारों देश कहां कहां हैं। जब आप उन लोकेशंस को लेकर के उन्हें एक लाइन से मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सच में ये तो कुछ चतुर्भुज जैसा आकार बन गया है। अब आपके दिमाग में फिर ये आना चाहिए कि भाई ये चार ही देश क्यों आए हैं और सामरिक इनके सामने क्या चुनौती है, सुरक्षा संबंधी चुनौती है ना। और चार देश अगर आपस में मिले हैं तो जो सुरक्षा संबंधी चुनौती है वो चारों की लगभग लगभग एक जैसी ही होगी। तभी आप ग्रुप जब बनाते हैं तो एक जैसे हित के लिए ही तो बनाते हैं। तो फिर आगे चल करके आपको पता लगेगा कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, या आप कह लीजिए कि जब आप उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि एक सामरिक संवाद किस इशू पर करेंगे, तो इनका जो विषय है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फ्री यानी स्वतंत्र, ओपन यानी कि बिल्कुल खुला, एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है जिसे आप हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, इस हिंद प्रशांत क्षेत्र को ये चाहते हैं कि ये स्वतंत्र रहे, यानी कि इस पर किसी का प्रभुत्व न हो, ओपन हो यानी कि सभी स्वतंत्र रूप से उसमें विचरण कर सकें या नेविगेशन वगैरह के लिए, है ना, और साथ ही साथ प्रॉस्परस हो यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी जो दूसरे राष्ट्र हैं, आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं, ये समृद्ध हो, ये इनका उद्देश्य है। तो जब आप हिंद प्रशांत क्षेत्र पर आते हैं और इन चारों देशों की लोकेशन को इससे जोड़ करके देखते हैं तो आपको पता लगता है कि जो चारों देश हैं ये हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए देश हैं, या तो वो वहां उस क्षेत्र में रह रहे हैं या उन क्षेत्रों से इनके बहुत जबरदस्त हित जुड़े हुए हैं। वो हित कुछ भी हो सकते हैं, सुरक्षा संबंधी हित हो सकते हैं, आर्थिक हित हो सकते हैं, आवागमन के हित हो सकते हैं, क्योंकि जो समुद्री क्षेत्र है तो नेविगेशन के माध्यम से तो सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अब सवाल यह है कि जब सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो इनको चुनौती किससे है, चुनौती किसी से तो होगी, तभी वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किससे खतरा है। तो फिर आपको साफ पता लग जाएगा कि ये जो खतरा है ये चीन से है। अब चीन से क्यों खतरा है, किस तरीके का खतरा है, खतरे हैं, ये आपको आगे जाकर के फिर पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बेसिक्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी सी मैंने बातें की हैं, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग किस्म की क्षमता विकसित होगी। क्षमता क्या होगी, क्षमता यह होगी कि अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सीधे सीधे आपने उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ा है, उसका उत्तर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, तो भी आपकी यह क्षमता हो गई है कि आप सही ऑप्शन तक पहुंच सके प्री एग्जामिनेशन में, और मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक प्रकार से आप समीक्षा कर सके, अपनी ओर से कुछ बिंदु उपलब्ध करा सके। और यही यूपीएससी चाहता है, आपके नॉलेज को चेक नहीं करना चाहता, वो बेसिकली आपकी क्षमता को चेक करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, क्वाड के माध्यम से आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं, अभिषेक रंजन रांची झारखंड से, प्रीतु ठाकुर हैदराबाद से, रमन शर्मा और रूपाली सिंह परिहार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।